फिर इसके बाद आगे सूरत नोक शुरू होती है, पारे का नसब इस पे होता है और 28 आयात है। हजरत नूह कौन थे? मैन ऑफ कमिटमेंट। 950 साल तक लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते रहे, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। अल्लाह ने उनको उनकी कोशिशों का अजर दे दिया और जुटलाने वालों को नीस्त तो नाबूद कर दिया। यह है पूरी सूरत में। मसलन पहली चार आयात में हजरत नूह की दावत का खुलासा है। अल्लाह ने इन नट शल बता दिया कि इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि डराओ अपनी कौम को इससे पहले कि उन पर अजाब अलीम आ जाए। इन्होंने कहा मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला आगाह करने वाला हूँ वार्नर, मेरा तो मुकाम बस ये है कि मैं नज़ीर हूँ। अनेबुदुल्ला, देखिएगा हर नबी का यही पैगाम है, अल्लाह की इबादत करो, वत्तकू और उससे डरो, हाँ व अती ऊन। ये जो नून की जेर है ना, ये असल में क्या था, अती ऊनी, मेरी बात मान लो। करना अल्लाह के लिए, लेकिन बात नबी की माननी है। क्या मिलेगा, यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, वो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें एक मुद्दत तक मोहलत देगा, और जब अल्लाह की मोहलत आ जाती है तो कोई पीछे नहीं रहता। क्या पता चला कि दावत बहुत सीधी थी। कौम का हाल देखिए, आयत 5 से 20 में हजरत नूह की दावत और कौम की सरकशी। काल रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, कहे मेरे रब मैंने तो अपनी कौम को सुबह को भी पुकारा, रात को भी पुकारा, मगर मेरे पुकारने ने उनको किसी चीज़ में ज़्यादा नहीं किया सिवाय नफरत के। मैंने जब कभी उनको पुकारा ताकि उनके गुनाह तू माफ़ कर दे, ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे, अपने कपड़े अपने मुंह पे डालते थे कि तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तेरी बात हमें अच्छी नहीं लगती। और वो बड़े ही अड़ गए, असर्रु इसरार किया, बस तकबर उस्तिकबारा, वजह तकबर थी। आज भी जिस बंदे के अंदर तकबर होगा वो कुरान की बात नहीं सुनेगा, गुस्सा आएगा उसको, बस चुप करो, अपने पास रखो अपना दीन, मुझे ना बताओ, मुझे सब पता है। सुम्मा इन्नी दाउतु हम जी हारा, फिर मैंने उनको पुकार के भी बुलाया। सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम, फिर मैंने एलानिया पुकारा, हाँ के पुकारे पुकारा, व असरतु लहुम इसरारा, कभी चुपके चुपके भी पुकारा, यानी सारी हुज्जतें तमाम की। फकुल तो अस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, ये है जी इस्तग़फार और उसके फ़ायदे आगे देखेंगे। तो आयत 11 से 20 में आपको इस्तग़फार के फ़वाद दिखेंगे, और वो क्या है, युरसिलिस समा अलैकुम इदरारा, तुम पे बरसने वाला पानी यानी बारिश देगा, तुम्हें माल और बेटों से मदद देगा, और तुम्हारे बागात होंगे और तुम्हारी नहरें चलेंगी। इमाम बसरी के बारे में आता है कि एक दफ़ा हसन बसरी असल में ताबई थे, तो एक शख्स उनके पास आया और उसने कहा कि खुशकसाली है, कुछ दुआ बताइए, जैसे लोग आज वजीफ़ा पूछें। इन्होंने कहा इस्तग़फार करो, वो चला गया। एक ने आके कहा कि माली कमी है, माल नहीं है, खसारा है, कहा इस्तग़फार पढ़ो। एक ने कहा बेटे नहीं औलाद नहीं, कहा इस्तग़फार पढ़ो। जो आ रहे उसको एक ही नुस्खा दे रहे हैं। बाद में जो शख्स उनके पास बैठा था कोई, उसने कहा आपने सबको एक ही चीज़ कह दी, तो उन्होंने ये आयात पेश की। और यकीन कीजिए कि हम पे जो तकलीफ़ें आती थी हमारे गुनाहों की सज़ा होते हैं। माँ साहब बकुमी मुसीबत अल्ला भी माँ का सबत आई दी को। अब जब आप इस्तग़फार करते हैं ना तो आपको वो गुनाह माफ़ होता है, तो जब वो गुनाह माफ़ हुआ तो चीज़ चली गई। ज़रा सा खुद से पूछिए, घर में जो बीमारी आई हुई है ये मेरे किस गुनाह की सज़ा होगी? ये जो घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, भला मेरा जुर्म क्या है? आपको इंशाल्लाह अल्लाह वो निगाह देगा कि आपको कम अज़ कम अपना कसूर तो दिखेगा। आमतौर पर हमें दूसरों के कसूर दिखते हैं। लिहाजा बिलाखिर फिर कौम की हठधर्मी पे नबी ने बद्दुआ दी। आयत 21 से 27, काला नूह रब्बी नहुम असौनी, नूह ने कहा रब मेरे इन्होंने मेरी नाफरमानी की, और बिल आखिर फिर उनके लिए दुआ की बजाय बद्दुआ हुई और फिर वो कौम तबाह कर दी गई। और उसके बाद फिर आयत 28 में एक खूबसूरत दुआ जो आप में से अक्सर लोग पढ़ते भी होंगे, रब्बे ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन दखला बैतिय मोमिना मोमिनम वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वला तज़िदिल ज़ालिमीना इल्ला तबारा। ईमान वालों को अल्लाह ने बचा लिया और झुटलाने और तकजीब करने वालों को पकड़ लिया। फितरत का असूल है, आखिर कब तक, हर चीज़ की एक हुज्जत होती है। आप भी अपने बच्चों को एक ख़ास हद तक ढील देते हैं, फिर आप उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। फिर इसके आगे सूरह जिन है, जो एक गिरोह जिन्नात का बस नबी से एक दफ़ा बात सुनकर गया, और कैसे जाकर अपनी कौम को आगाह करने वाले हैं। 28 आयात हैं। पहली 3 आयत में कुरान पाक की अज़मत, जिन्नात की ज़ुबानी, कुलू ही इलैय नखुस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी, कह दीजिए कि मेरी तरफ वही की गई अल्लाह के नबी की तरफ। क्या कि जिन्नों के एक गिरोह ने कोई बात सुनी और जाकर अपनी कौम को कहने लगे, इन्ना समेना कुराना नजबा, हमने बड़ा अजीब कुरान सुना है। अच्छा, अजीब उर्दू में तो गरीब चीज, गलत मतलब स्ट्रेंज चीज़ को कहते हैं ना, अरबी ज़ुबान में उजब खूबसूरती को कहते हैं। कुरान नजबा से पता चलता है, उलमा कहते हैं कि नए नए लोगों को पहले कुरान की खूबसूरतियाँ दिखाइए, उसका डिस्प्ले, साफ जगह, कुछ स्नैक्स दीजिए, कुछ खाने पीने का अरेंज हो, उनका दिल लगे। जब दिल लग गया ना, तो यहदी इला रुश्द की बात आसान हो जाएगी। नए लोगों को बहुत मुश्किलात में और पाबंदियों में नहीं डालना चाहिए। और नए लोगों से मुराद आपके बच्चे भी हैं। आप चाहते हैं कि वो कुरान से जुड़े, तो आप उसको कुरान के मिरेकल्स दिखाइए, खूबसूरत वर्ड्स दिखाइए, जन्नत की आयतें दिखाइए वगैरह, और फिर इसके बाद जिसका दिल अल्लाह खोल दे। फिर उसके बाद आयत नंबर 4 से 7 में गुमराही का सबब इनकारे आखरत है। जब तक अकीदा है आखरत ठीक नहीं होगा, हिदायत नहीं मिलेगी, और जिन्नात और इंसानों दोनों के साथ यही मामला है। फिर आयत नंबर 8 से 10 में आसमान पर वही की खसूसी हिफाजत है। जिन्नात पहले आसमानों पे चले जाते थे, जब से वही इलाही का सिलसिला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे नाजिल हुआ, या जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, आसमानों पे पहरे लगा दिए गए। ये ऐसी है कि जब कोई बड़ी शख्सियत आती है ना, तो एयरपोर्ट जाने के रास्तों पे पुलिस खड़ी हो जाती है, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ये किताब की हिफाजत है। सूरह हिजर में हम पढ़ कर आए कि अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया है। फिर उसके बाद ईमान लाने में ही खैर है। आयत 11 से 13 में ये मौजू है। इससे पता चलता है कि जैसे इंसानों में नेक और बद है ना, ऐसे जिन्नात में भी हैं। वान्ना मिन्ना साले हूँ ना व मिन्ना दू ना जालिका, अच्छे जिन्नात भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे जन्नत में जाएंगे और बुरे जहन्नम में। आप कहेंगे हाय जन्नत में जिन्न होंगे, मैं नहीं जाती। फिक्र ना कीजिए, इस दुनिया में यहाँ भी जिन्न है इस वक्त, अल्लाह को पता है। छुपी हुई जिन कहती छुपी हुई चीज़ को है। तो आप अपना काम कीजिए, अल्लाह को उसका काम करने दीजिए। फिर आयत नंबर 14 से 17 में कबूलियत हक का सिला और इनकार का इंजाम, यानी जो लोग हक को कबूल कर लेते हैं उनको तो अल्लाह ताला ने इधर खुशखबरियाँ दे दी। क्या लास्कीनाहुम्मान गदका, हम उनको खुला पानी, ठंडा मीठा पानी पिलाएं। और इनकार करने वालों को क्या कहा, फकानूली जहन्नम खतबा, वो तो जहन्नम का ईंधन बनेंगे, उसकी लकड़ियाँ बनेंगे। फिर आगे मसाजिद की बात है, आयत 18 से 19 में मसाजिद में अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, घर वाला घर ना हो तो दिल नहीं लगता। आजकल कुछ मसाजिद में फिरकावारियत, गंदगी, एक दूसरे के साथ बढ़ोतरी ऐसी हो गई कि लोगों के दिल मस्जिद में नहीं लगते। और कुछ मस्जिदों के अंदर उनकी सुपरविजन में शिर्क प्रमोट हो रहा है। ये आयत बताती है कि मस्जिद जू के अल्लाह की है, उसके अंदर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम ना लो। फिर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की नाजुक जिम्मेदारी है। आयत 20 से 25 में कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला अशरिकु बिही शैया, अम्बिया कराम को अल्लाह ने इस काम के लिए चुना, और याद रखे ये आसान काम नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह करते हैं। ये 7 समंदरों का पानी पीकर दूसरों को देने वाली ये चीज़ है। वह माह हुआ बिल हज़ल, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। आज हम कुरान को बड़ा लाइट लेते हैं। कोई डॉक्टर बने बगैर क्लिनिक खोल ले, उसका लाइसेंस है ही नहीं, दुकान बंद हो जाएगी। 2-4 साल पढ़कर कोई जाकर किसी क्लिनिक में डॉक्टरी के बोर्ड के साथ लोगों का इलाज करे, बाहर की दुनिया में तो उसको मेरा ले मारी दे कि तुम कि लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। हमारे यहाँ भी कहते हैं नकी नीम हकीम खतरा है जान, तो नीम ईमान वाला खतरा ईमान। जब तक दीन की पूरी रूह आपके अंदर ना उतर चुकी हो, फिर उसको हजम करें, उसको जिस्म का हिस्सा बनाएं, फिर अपने अमल में डालें, फिर दीजिए बाहर। मिसाल देती हूँ कि आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, पेट में जाता है, दांत लगते हैं, चिबाते हैं, फिर मैदे में उस पर कुछ काम होता है, फिर आपके इंटेस्टाइन में उस पर कुछ एक्शंस होते हैं, बिल आखिर वो आपके खून में ग्लूकोज बन के और कुछ और फॉर्म में जाता है, हजम हो गया, अब वो सारे जिस्म को ताकत देता है। लेकिन कभी खुदा ना खास्ता डायरिया हो जाए, जो ही खाया वॉमिट हो गई, वो जो वॉमिट की स्मेल होती है वो क्या होती है, कि आपकी बॉडी ने इस खाने को एक्सेप्ट नहीं किया। आप इल्म लें, लोग कहते हैं फलां का सुन के लिख लेंगे, फलां का देखा हुआ उसकी जाके ये करें, आप किसी से भी सुन के लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी लिख लें, और अगर आपने खुद को उसके अंदर नहीं फिट किया ना, तो वो वॉमिट है और नकाहत होती है। तो ज़रूरत है इस बात की कि ये नाजुक जिम्मेदारी है, और इसके लिए अल्लाह से दुआ करके यहाँ बैठूँ मैं, मुझे भी इस काम को करते वक्त बहुत डर लगता है। ये इतनी मुश्किल चीज़ है कि अगर वाकई हज़रत अबू हुरैरा वाली बात याद आती है, कि अगर इस बात का डर ना होता ना कि अबू हुरैरा ने इल्म को छुपा लिया, तो मैं कभी लोगों को एक हदीस नबवी भी ना बताता। फिर उसके बाद रसूलों को गैब का कुछ इल्म दिया जाता है, जो जितना अल्लाह चाहे। आयत 26 से 28 में ये बात है, असल आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, कोई उसके गैब को जाहिर नहीं किए, किसी को उसका गैब नहीं पता, हाँ मगर अपने रसूलों में जिसको चाहे। तो क्या पता चला कि अम्बिया कराम को भी मुकम्मल इल्म गैब नहीं होता, जब जहाँ जितना अल्लाह दे दे वो मिलता है। फिर आगे है जी सूरत मुज़म्मिल।